एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज की इस चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है।
नमस्कार। आज हम उन छोटी बहुत ही छोटी अदृश्य चीजों की बात करेंगे जो हमारे आसपास की हर चीज को बनाती हैं।
अणु, मॉलिक्यूल्स, मतलब दिखते तो नहीं है पर है सब कुछ।
बिल्कुल। और इस दुनिया को समझने में हमारी मदद करेंगे फिलिप बॉल। उनकी दो किताबें हैं, मॉलिक्यूल्स द आर्किटेक्ट्स ऑफ रियलिटी और मॉलिक्यूल्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आज हम इन्हीं किताबों के विचारों पर बात करेंगे।
हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये विषय आज इतना जरूरी क्यों है। देखिए, सुबह की चाय का स्वाद हो या हमारे शरीर का काम करना, नई दवाइयां कैसे असर करती हैं, यहां तक कि हमारे फोन की स्क्रीन, हर चीज के पीछे यही अणु है।
सही कहा। तो आज का हमारा मकसद है इन अणुओं की भूमिका को समझना, और ये भी कि इन्हें समझना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए इस आणविक दुनिया की गहराई में उतरते हैं।
हाँ, और देखते हैं कि ये नन्हे आर्किटेक्ट्स हमारी असलियत, हमारी हकीकत कैसे बनाते हैं।
हाँ।
सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात हो जाए। फिलिप बॉल वो कोई आम साइंस राइटर नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी पृष्ठभूमि काफी दिलचस्प है। उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी की है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है।
हाँ,
पर सबसे खास बात यह है कि उन्होंने 20 साल से भी ज्यादा दुनिया की शायद सबसे बड़ी साइंस मैगजीन नेचर में एडिटर का काम किया है।
ओह, 20 साल! इसका मतलब तो ये हुआ कि वो विज्ञान की दुनिया में क्या चल रहा है उस पर नजर रखते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मटेरियल साइंस।
हाँ, बिल्कुल। और जो नई से नई रिसर्च हो रही है उसकी उन्हें गहरी समझ है। और उनकी असली खूबी जानते हैं क्या है?
क्या?
वो मुश्किल से मुश्किल साइंटिफिक आइडियाज को भी बहुत आसान भाषा में दिलचस्प कहानियों की तरह समझा देते हैं।
अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और कैसे भी समझाते होंगे फिर।
सही। वो विज्ञान को इतिहास से, संस्कृति से जोड़कर देखते हैं, इसीलिए अणुओं जैसे थोड़े जटिल लगने वाले विषय को समझाने के लिए वो एकदम सही व्यक्ति हैं, खासकर जब हम अणुओं की भूमिका और उनको समझने की कोशिश पर ध्यान दे रहे हों।
तो ये किताबें किस बारे में हैं? मतलब इनका निचोड़ क्या है?
देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किताबें हमें अणुओं की दुनिया की एक यात्रा पर ले जाती हैं। इनका मूल आइडिया ये है कि अगर हमें अपनी दुनिया को, मतलब अपने आसपास की चीज़ों को, जीवन को, टेक्नोलॉजी को सच में समझना है तो हमें अणुओं को समझना होगा। वो दिखते कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, ये सब।
ये तो एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढने जैसा है कि कैसे ये न दिखने वाले कण, ये अणु, मिलकर वो ठोस दुनिया बनाते हैं जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।
बिल्कुल। फिलिप बॉल यही कहते हैं कि अणु सिर्फ लैब में टेस्ट ट्यूब में रखी कोई चीज नहीं है, वो तो जैसे लेगो ब्रिक्स होते हैं ना।
हाँ हाँ, बच्चों के खेलने वाले।
बस ये अणु वैसे ही बुनियादी लेगो ब्रिक्स हैं जिनसे हमारी पूरी हकीकत, हमारी पूरी असलियत बनी है। वो सच में वास्तविकता के वास्तुकार हैं।
और ये किताबें सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, है ना? मतलब कोई भी पढ़ सकता है।
जी हाँ, कोई भी जिसे थोड़ी जिज्ञासा हो, भले ही केमिस्ट्री पहले ना पढ़ी हो, शुरुआत बहुत बेसिक सवालों से होती है। अणु क्या है, ये परमाणु से अलग कैसे है, फिर धीरे धीरे पदार्थ की अवस्थाएं, जीवन के अणु और यहां तक कि नैनो टेक्नोलॉजी के भविष्य तक ले जाती हैं।
तो मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है?
नहीं, मकसद एक तरह की आणविक साक्षरता या मॉलिक्यूलर लिटरेसी पैदा करना है। लक्ष्य ये है कि हम दुनिया को स्थिर चीजों के ढेर की तरह ना देखें, बल्कि अणुओं के एक लगातार चलते हुए एक जिंदा दिल नाच के रूप में देखें और समझें कि इस नाच में हर अणु का अपना एक खास रोल, एक खास भूमिका है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। अणु ये है क्या आखिर? परमाणु यानी एटम से कैसे अलग है? जैसे पानी, H2O।
हाँ, देखिए, परमाणु तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अकेले तत्व हैं। जब ये परमाणु खास तरीकों से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, रासायनिक बंधनों से, केमिकल बॉन्ड्स, तब अणु बनता है।
अच्छा।
H2O में दो हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हैं, तो अणु परमाणुओं का एक व्यवस्थित समूह है।
और ये बंधन, ये केमिकल बॉन्ड, ये क्या है? जैसे कोई गोंद जो इन्हें जोड़ता है।
हाँ, कह सकते हैं एक तरह का गोंद ही है। सबसे आम है सहसंयोजक बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, जैसे हाथ मिला रहे हों। ये काफी मजबूत बंधन होते हैं। आयोनिक बंधन भी होते हैं जहां एक परमाणु दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे नमक NaCl में। लेकिन हमारे आसपास की ज्यादातर चीजों और जीवन में ये कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा जरूरी हैं।
लेकिन इन किताबों से जो सबसे जरूरी बात मुझे लगी वो है अणु का आकार, मॉलिक्यूलर शेप, कि अणु सिर्फ H2O जैसा फॉर्मूला नहीं है, उसकी एक 3D बनावट होती है।
बिल्कुल, यही तो सबसे अहम बात है। अणु का वो 3D आकार ही तय करता है कि वो क्या काम करेगा, उसकी भूमिका क्या होगी। यहीं से विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत आता है, स्ट्रक्चर डिटरमिन्स फंक्शन,
संरचना ही कार्य है।
हाँ, अणु का आर्किटेक्चर, उसकी बनावट ही उसकी पहचान है और वही उसका काम तय करती है। जैसे एक खास चाबी ही खास ताले में फिट होती है ना।
हाँ बिल्कुल,
बस अणु का आकार भी उसके काम के लिए उतना ही जरूरी है।
ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये अणु बनते कैसे हैं? क्या प्रकृति और हम इंसान, मतलब लैब में, इन्हें अलग अलग तरह से बनाते हैं?
हाँ, इसमें काफी फर्क है। लैब में जो रासायनिक संश्लेषण होता है, केमिकल सिंथेसिस, वो अक्सर थोड़ा कह सकते हैं बिखरा हुआ सा होता है। हम चीजों को मिलाते हैं, गर्म करते हैं, उत्प्रेरक डालते हैं, कैटलिस्ट, जो रिएक्शन तेज करते हैं। इसमें काफी ऊर्जा लगती है और अक्सर बेकार की चीजें बाय प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं।
अच्छा,
ये थोड़ा टॉप डाउन तरीका है, मतलब बड़ी चीजों से शुरू करके।
और प्रकृति ये काम कैसे करती है? सुना है वो ज्यादा अच्छी तरह से करती है।
प्रकृति की कारीगरी तो कमाल की है। जीवन अणु बनाने के लिए खास प्रोटीन इस्तेमाल करता है, जिन्हें एंजाइम कहते हैं।
एंजाइम, हाँ सुना है।
ये एंजाइम अविश्वसनीय रूप से सटीक होते हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी। वो सही अणुओं को पहचानते हैं, उन्हें एकदम सही पोजिशन में पकड़ते हैं और बहुत कम ऊर्जा खर्च करके, बिना कोई कचरा पैदा किए, रिएक्शन करवा देते हैं।
वाओ,
ये प्रकृति की आणविक मशीनें हैं, एकदम बॉटम अप इंजीनियरिंग, एक एक अणु जोड़कर बनाना।
इसी से जुड़ा एक और हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट है। आपने बताया काइरालिटी, हैंडेडनेस, मतलब अणुओं के भी दाएं और बाएं हाथ होते हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे हाथ हैं एक दूसरे की मिरर इमेज, आईने की छवि, पर एक जैसे नहीं है। आप दाएं हाथ का दस्ताना बाएं में नहीं पहन सकती।
सही बात है।
वैसे ही बहुत सारे अणु भी अपने दर्पण रूपों में मौजूद होते हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला एक ही होता है, पर 3D आकार अलग होता है और शरीर में उनका असर जमीन आसमान का हो सकता है। क्योंकि हमारे शरीर के जो अणु हैं, जैसे एंजाइम्स, वो भी हाथ वाले होते हैं। वो सिर्फ सही हाथ वाले अणु से ही जुड़ते हैं।
थैलिडोमाइड दवा का जो भयानक किस्सा है वो इसी से जुड़ा है ना?
हाँ, वो एक बहुत दुखद सबक था। उस दवा के एक हाथ वाला अणु तो सुरक्षित था, असरदार था, पर दूसरा हाथ वाला अणु वो गर्भवती महिलाओं में बच्चों के अंदर गंभीर जन्म दोष पैदा कर रहा था।
कितना भयानक।
इससे ये पता चला कि अणु बनाते समय सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं कि क्या बनाना है, बल्कि उसका बिल्कुल सटीक 3D आकार बनाना कितना ज्यादा जरूरी है। ये आणविक पहचान का, मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन का सटीक उदाहरण है।
अब जरा ये देखते हैं कि ये अणु मिलकर पदार्थ कैसे बनाते हैं, ठोस, तरल वगैरह। ठोस चीजों में अणु कैसे जमे होते हैं, क्रिस्टल में?
हाँ, ठोस में मुख्य रूप से दो तरह की व्यवस्था मिलती है। एक तो क्रिस्टल, जैसे नमक, चीनी, हीरा, इनमें अणु या परमाणु एक बहुत ही व्यवस्थित, रेगुलर, दोहराए जाने वाले पैटर्न में जमे होते हैं। इसे लैटिस कहते हैं। इसी व्यवस्था से उन्हें कठोरता मिलती है, एक निश्चित आकार मिलता है।
और प्लास्टिक या रबर जैसे पदार्थ, वो तो क्रिस्टल जैसे सख्त नहीं लगते।
सही कहा, वो पॉलीमर्स हैं। ये बहुत लंबी लंबी अणुओं की चेन होती हैं, जैसे मोतियों की माला, पर बहुत लंबी। प्लास्टिक की थैली में ये चेन नूडल्स की तरह उलझी हुई होती हैं, इसीलिए वो लचीली होती है। कुछ पॉलीमर्स जैसे केवलर, उनमें चेन ज्यादा सीधी और व्यवस्थित होती हैं, तो वो बहुत मजबूत होते हैं।
अच्छा,
तो पॉलीमर के गुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि चेन कितनी लंबी है और वो आपस में कैसे उलझी या सजी हुई है।
और कांच, जैसे खिड़की का कांच या पीने का ग्लास, वो क्या है?
कांच थोड़ा अलग है, उसे अनाकार ठोस कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। इसमें अणु क्रिस्टल की तरह किसी रेगुलर पैटर्न में नहीं होते, बल्कि बेतरतीब बिखरे होते हैं, जैसे आपने किसी तरल की फोटो खींच ली हो एकदम से। इसीलिए कांच जब टूटता है तो वो किसी भी तरह से टेढ़ा मेढ़ा टूटता है, क्रिस्टल की तरह सीधी रेखाओं में नहीं।
समझ गई। और तरल पदार्थों में, जैसे पानी में, वहां अणु कैसे रहते हैं?
तरल में अणु होते तो एक दूसरे के करीब हैं, पर उनमें बहने की आजादी होती है। वो बंधे हुए नहीं होते एक जगह पर। उनके बीच कुछ कमजोर, पल भर के लिए बनने वाले आकर्षण बल काम करते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस।
अच्छा,
आप इन्हें अणुओं के बीच के हल्के अस्थायी चुंबक जैसा समझ सकती हैं। ये उन्हें साथ भी रखते हैं, पर फिसलने और बहने भी देते हैं।
और पानी का अणु H2O, वो तो यहाँ बहुत खास है ना? फिलिप बॉल इस पर काफी जोर देते हैं।
हाँ, पानी जीवन के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसकी वजह उसके अणु की बनावट ही है। पानी का अणु ध्रुवीय है, पोलर। मतलब उसके एक सिरे पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन वाले सिरे पर, और दूसरे सिरों पर हाइड्रोजन वाले सिरों पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से पानी के अणु एक दूसरे के साथ एक खास तरह के थोड़े मजबूत किस्म के चुंबक बना लेते हैं। इन्हें हाइड्रोजन बंधन कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
हाइड्रोजन बॉन्ड्स,
हाँ। इन्हीं बंधनों की वजह से पानी के वो सब अनोखे गुण हैं कि वो देर से उबलता है, कि वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर घोल लेता है, कि बर्फ पानी पर तैरती है।
अरे हाँ, बर्फ का तैरना।
ये सब गुण जीवन के पनपने के लिए बेहद जरूरी हैं। पानी वाकई एक अद्भुत अणु है।
कमाल है। अब आते हैं जीवन के अणुओं पर, प्रकृति के असली मास्टरपीस। प्रोटीन की क्या भूमिका है? ये इतने जरूरी क्यों है?
प्रोटीन, अरे ये तो कोशिकाओं के वर्क हॉर्स है, समझिए हर काम करने वाले मजदूर। ये अमीनो एसिड नाम की करीब 20 अलग अलग तरह की छोटी इकाइयों से बनी लंबी चेन होती हैं।
अच्छा।
लेकिन प्रोटीन का असली जादू उनकी चेन में नहीं, उनके मुड़े तोड़े 3D आकार में है। चेन बनने के बाद वो एक खास तरीके से मुड़कर फोल्ड होकर एक जटिल 3D शेप ले लेती है।
और वही शेप
तय करता है कि वो प्रोटीन क्या काम करेगा। क्या वो एंजाइम बनकर कोई रिएक्शन करवाएगा, या शरीर को ढांचा देगा जैसे हमारे बालों में केराटिन, या खून में ऑक्सीजन ढोएगा जैसे हीमोग्लोबिन।
समझ गए, आकार ही कार्य है, फिर से वही बात।
बिल्कुल, प्रोटीन में ये सिद्धांत एकदम साफ दिखता है।
और वो अणु जो हमारी जानकारी सहेजते हैं, DNA और RNA?
हाँ, न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA, ये हमारे जेनेटिक कोड, हमारी आनुवांशिक जानकारी के भंडार हैं। DNA की वो जो मशहूर डबल हेलिक्स संरचना है, दोहरी कुंडली, वो तो डिजाइन का एक मास्टरपीस
है ना? वो तस्वीर तो सबने देखी होगी।
दो पूरक धागे जो बीच में हाइड्रोजन बंधनों से जुड़े हैं, ये बनावट जानकारी को बहुत सुरक्षित रखती है, और साथ ही कॉपी करने और पढ़ने के लिए भी एकदम सही है।
और लिपिड यानी वसा और तेल, और कार्बोहाइड्रेट यानी शक्कर और स्टार्च, इनका क्या काम है?
लिपिड यानी फैट्स और ऑयल्स, इनका मुख्य काम है कोशिका की बाहरी दीवार बनाना, सेल मेम्ब्रेन। ये झिल्ली कोशिका के अंदर के माहौल को बाहर की दुनिया से अलग रखती है, एक तरह का लचीला कंटेनर।
और कार्बोहाइड्रेट?
कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, ये शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं, इंस्टेंट एनर्जी, और पौधों में सेलुलोज के रूप में ये ढांचा बनाने का काम भी करते हैं।
ये तो हुई प्रकृति की आणविक दुनिया। अब देखते हैं कि अणु तकनीक में कैसे काम आते हैं, हमें रंग कैसे दिखाई देते हैं, इसका भी अणुओं से लेना देना है।
हाँ जी बिल्कुल, रंग दिखने का कारण भी अणु ही है। कुछ खास अणु होते हैं जिन्हें क्रोमोफोर कहते हैं। इन अणुओं में इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं कि वो सूरज की रोशनी के कुछ खास रंगों को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
अच्छा।
और बाकी रंगों को परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो रंग रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, वही रंग हमें उस चीज का दिखाई देता है।
कमाल है। और साबुन, वो कैसे काम करता है? वो भी अणुओं का ही खेल है।
हाँ, साबुन के अणु बड़े होशियार होते हैं। उनके दो चेहरे होते हैं कह सकते हैं। एक सिरा पानी को पसंद करता है, हाइड्रोफिलिक। दूसरा सिरा तेल और चिकनाई को पसंद करता है, हाइड्रोफोबिक।
अच्छा, दो मुंह वाला अणु।
बिल्कुल, जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो उसका तेल पसंद वाला सिरा मैल और चिकनाई के कणों को चारों तरफ से घेर लेता है, और पानी पसंद वाला सिरा बाहर की तरफ रहता है। फिर जब हम पानी डालते हैं तो पानी इन साबुन मैल के गुच्छों को अपने साथ बहा ले जाता है।
वाह, कितनी सरल और स्मार्ट तकनीक है। और हमारी स्क्रीन, फोन या TV की LCD स्क्रीन, उसमें अणु क्या करते हैं?
LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसमें लिक्विड क्रिस्टल अणु इस्तेमाल होते हैं। ये अणु बड़े मजेदार होते हैं। ये तरल की तरह बह तो सकते हैं, पर इनमें थोड़ी बहुत क्रिस्टल जैसी व्यवस्था भी होती है। मतलब अणु एक दिशा में सधे रह सकते हैं,
लिक्विड भी और क्रिस्टल भी।
हाँ, और जब इन पर बिजली लगाई जाती है तो ये अणु एक खास दिशा में घूम जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। अब रोशनी इन सधे हुए अणुओं से अलग तरह से गुजरती है बनिस्बत बेतरतीब अणुओं के। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके स्क्रीन के छोटे छोटे हिस्सों, पिक्सल्स, से रोशनी को रोका या जाने दिया जाता है, और हमें तस्वीर दिखती है।
बाप रे, ये तो बहुत ही जटिल लग रहा है। और भविष्य में आणविक मशीनें, मॉलिक्यूलर मशीन, ये क्या चीज है?
जरा सोचिए, ऐसी मशीनें जो अणुओं के साइज की हों, मतलब नैनोमीटर स्केल पर, ये असल में अणु या अणुओं के समूह होते हैं जिन्हें इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो खास काम कर सकें, जैसे घूमना, चलना, किसी चीज़ को पकड़ना और छोड़ना, या स्विच की तरह ऑन ऑफ होना।
क्या ऐसी मशीनें सच में हैं?
प्रकृति में तो ये भरी पड़ी हैं। जैसे हमारे शरीर में ATP सिंथेज नाम की एक कमाल की आणविक मशीन है जो हमारे लिए ऊर्जा बनाती है।
वो घूमती है।
अब वैज्ञानिक लैब में भी ऐसी कृत्रिम आर्टिफिशियल नैनो मशीनें बना रहे हैं।
तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का भविष्य है?
हाँ, ये नैनो टेक्नोलॉजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। भविष्य में शायद हम चीजों को ऊपर से नीचे तोड़ने के बजाय नीचे से ऊपर एक एक अणु जोड़कर बना पाएं। इसे बॉटम अप इंजीनियरिंग कहते हैं।
तो इन सारी बातों से कुछ मुख्य संदेश, कुछ खास थीम उभर कर आते हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यही रहा, संरचना ही कार्य है। स्ट्रक्चर डिटरमिन्स फंक्शन। अणु का 3D आकार ही सब कुछ है।
बिल्कुल, ये एक डिजाइन प्रिंसिपल है जो लगता है पूरे ब्रह्मांड में काम करता है। दूसरा अहम थीम है आणविक पहचान और चयनात्मकता, मॉलिक्यूलर रिकग्निशन एंड सेलेक्टिविटी, कि अणु एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं और सिर्फ खास अणुओं से ही जोड़ते हैं, जैसे ताला और चाबी। जीवन की सारी प्रक्रियाएं, दवाइयों का असर, सब इसी पर निर्भर है।
हाँ, और तीसरा, उभरने वाले गुण, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि अणुओं के अकेले गुण पूरी कहानी नहीं बताते, जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनके समूह में बिल्कुल नए गुण पैदा हो जाते हैं जो अकेले अणु में थे ही नहीं।
सही कहा। जैसे एक H2O अणु गीला नहीं होता, पर बहुत सारे अणु मिलके जो पानी बनाते हैं वो गीला होता है। तरलता, जीवन खुद, ये सब अणुओं के समूह के उभरने वाले गुण हैं।
चौथा, आणविक विज्ञान की एकता, यूनिटी ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस, कि चाहे बायोलॉजी पढ़ें या केमिस्ट्री या मटेरियल साइंस, सबके पीछे वही अणुओं के बुनियादी सिद्धांत काम कर रहे हैं।
हाँ, ये विज्ञान की मौलिक एकता दिखाता है। और आखिरी पांचवा थीम है मानवता आणविक वास्तुकार के रूप में, ह्यूमैनिटी एज मॉलिक्यूलर आर्किटेक्ट्स। हम सिर्फ अणुओं को समझ नहीं रहे हैं, अब हम उन्हें अपनी मर्जी से डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इसी का उदाहरण है। भारत में भी नई दवाओं के विकास, बेहतर मटेरियल बनाने या खेती में सुधार के लिए इसी आणविक समझ का इस्तेमाल हो रहा है, और आगे और होगा।
इन किताबों में कई बातें ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं, कुछ ऐसे विचार जो दिमाग में अटक जाते हैं।
एक तो यही विचार कि अणु सिर्फ पदार्थ के हिस्से नहीं हैं, वे खुद वास्तविकता के वास्तुकार हैं। ये उनकी पैसिव भूमिका के बजाय एक्टिव भूमिका दिखाता है। वो सिर्फ हैं नहीं, वो सक्रिय रूप से बनाते हैं।
और ये कि आणविक दुनिया में आकार ही नियति है, शेप इज डेस्टिनी, ये फिर से उसी संरचना कार्य वाले नियम पर जोर देता है। अणु की 3D बनावट ही तय करती है कि वो क्या बनेगा, क्या करेगा।
हाँ, एक और बहुत खूबसूरती से कहा गया विचार है, जीवन गतिमान रसायन विज्ञान है, आणविक पहचान बंधन और परिवर्तन का एक अंतिम नृत्य। ये दिखाता है कि जीवन की जो जटिलता है वो अणुओं के इस लगातार चलते रहने वाले सटीक तालमेल वाले नृत्य से ही पैदा होती है।
मुझे ये भी बहुत पसंद आया, अणुओं को समझना पदार्थ की व्याकरण सीखने जैसा है, वो नियम जिनके द्वारा परमाणु हमारी भौतिक दुनिया की कहानी लिखते हैं। ये आणविक विज्ञान को दुनिया को समझने की एक बुनियादी भाषा या लिटरेसी की तरह दिखाता है।
बिल्कुल, और आखिर में ये भविष्य की ओर इशारा करने वाला विचार। हर तकनीकी क्रांति अपने मूल में एक आणविक क्रांति रही है। सोचिए, कांस्य युग से लेकर लौह युग, फिर प्लास्टिक युग, और अब सिलिकॉन युग या नैनो युग, ये सब असल में पदार्थों को यानी अणुओं को बेहतर ढंग से समझने और इस्तेमाल करने की कहानी है।
तो ये सारी ज्ञान की बातें हमारे सुनने वालों के रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आ सकती हैं? इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है?
अरे, कई तरीकों से। सबसे पहले तो स्वास्थ्य और चिकित्सा में। ये समझने में मदद मिलती है कि दवाई कैसे काम करती हैं, क्यों डॉक्टर कहते हैं कि पूरी डोज लेनी चाहिए। हम जो खाना खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वो आणविक स्तर पर क्या है, शरीर उनका इस्तेमाल कैसे करता है, ये समझ बेहतर होती है। पोषण को लेकर बेहतर चुनाव कर सकते हैं।
और घर के रोजमर्रा के कामों में भी।
हाँ, रसोई में ही देखिए, अंडा उबालने या तलने पर उसका प्रोटीन अपना आकार बदल लेता है, डिनेचर हो जाता है, इसीलिए वो सफेद और सख्त हो जाता है।
अच्छा,
सफाई करते समय साबुन कैसे काम करता है, ये समझ आता है। यहाँ तक कि चीजों को बेहतर समझ सकते हैं, प्लास्टिक की थैली क्यों लचीली है और कांच का ग्लास क्यों भंगुर? क्योंकि उनके अणुओं की व्यवस्था अलग है।
और टेक्नोलॉजी में भी, जैसे अब हमें पता है कि एलसीडी स्क्रीन के पीछे लिक्विड क्रिस्टल अणुओं का खेल है।
हाँ, और पर्यावरण के मुद्दों को समझने का भी आधार मिलता है, जैसे क्लाइमेट चेंज में CO2 जैसे अणुओं की क्या भूमिका है, या प्रदूषण का मतलब क्या है बस गलत जगह पर गलत अणु का होना।
पर शायद सबसे बड़ा फायदा है हमारी सोच में बदलाव लाना, दुनिया को सिर्फ बड़ी ठोस चीजों की तरह नहीं देखना।
बिल्कुल, बल्कि उसे लगातार नाचते बदलते जुड़ते टूटते अणुओं के एक विशाल गतिशील समुदाय की तरह देखना। इससे अपने आसपास की दुनिया के लिए एक नया सम्मान, एक नई जिज्ञासा पैदा होती है। हर चीज के पीछे एक कहानी है, अणुओं की कहानी।
मेरे लिए तो सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि कैसे कुछ बहुत ही सरल लगने वाले आणविक नियमों से, जैसे परमाणु कैसे जोड़ते हैं, अणु कैसा आकार लेते हैं, उनके बीच कैसे हल्के आकर्षण बल होते हैं, इतनी ज्यादा जटिलता, इतनी वैरायटी, यहां तक कि जीवन खुद कैसे उभर आता है। ये अदृश्य दुनिया ही हमारी दिखाई देने वाली, अनुभव की जाने वाली दुनिया को पूरी तरह से चला रही है। वाकई में अणु ही वास्तविकता के वास्तुकार हैं।
और मेरे लिए सबसे अहम सीख ये है कि आणविक विज्ञान एक तरह का यूनिफाइंग फ्रेमवर्क है, सबको जोड़ने वाला ढांचा है। ये जीव विज्ञान से लेके रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक सब कुछ जोड़ता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये दुनिया को समझने का एक प्रैक्टिकल व्यावहारिक नज़रिया है जो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। और ये हमें दिखाता है कि हम सिर्फ अणुओं के बनाए हुए निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, हमें खुद भी अणु स्तर पर चीज़ों को बदलने, बनाने और आकार देने की क्षमता है। हम भी वास्तुकार बन सकते हैं या बन रहे हैं।
हाँ, ये सोचना ही रोमांचक है।
अणुओं की भूमिका समझना और फिर उन्हें डिजाइन करने का लक्ष्य रखना, शायद यही भविष्य की एक बड़ी दिशा है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।